लिहाजा यही बात करके अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रेमेडी भी दे दी, बाप किधर है क्या, वो तो नबीना हो चुके हैं, रो रो के कहा जाओ लेकर आओ, कैसे जाओ, ये मेरी कमीज ले जाओ और उस पर डाल दो। अब यहाँ जरा कमीज की करामते हैं, आगे जाके इस पर बात करते हैं। जब ये काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके बाप ने कनान में कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, ये घर के लोग कौन थे, बेटे तो उधर गए हुए थे, बहुएं पोते पोतियां बच्चे बेटों के, क्या कहेंगे, खुदा की कसम आप अभी तक अपने इसी पुराने खप्त में पड़े हुए। जैसा बेटा बोलेगा ना माँ के साथ, वैसे ही बहू भी बोलेगी, और जैसे बहू बोलेगी वैसे ही पोते भी बोलेंगे, पोतियां भी बोलेंगे। घर में दादा बाप और पोता रहता था, तो पोता देखता था कि दादे को पिछले कमरे में एक छोटी सी कुटिया में एक पुराने से कंबल में ही लेटे देखा। फिर क्या हुआ कि एक दिन दादा का इंतकाल हो गया। जब सारा मामला पूरा हुआ तो वो कंबल जो था ना खिसा पिटा, उसको लपेट कर पोता कहीं जा रहा था। तो बाप ने पूछा कि इसको किधर लेके जा रहे हो, कहने लगा अब्बू अब मैं इस कंबल को संभाल दूंगा, जब आप बूढ़े होंगे तो मैं आपको ये दूंगा। याद रखिए टिट फॉर टैट, जो दुनिया में करेंगे वैसे ही होगा। तो गुस्ताख और बेअदब औलादें जो होती हैं ना, वो दुनिया में इसका बदला पा लेती हैं, अल्लाह ताला माफ कर दे सबको। फिर जब खुशखबरी लाने वाला आया तो इसने यूसुफ की कमीज याकूब के मुंह पर डाल दी और यकायक इनकी बेनाई वापस आ गई। तब उन्होंने कहा, मैं तुमसे ना कहता था, मैं अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सब बोल उठे, अब्बा जान आप हमारे गुनाहों की बख्शिश की दुआ करें, वाकई हम खताकार थे। ये तीसरी दफा ये जुमला इनका आया इस सूरत में कि हम खताकार थे, हम खताकार थे। उन्होंने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए माफी की दरख्वास्त करूंगा और वो बड़ा माफ करने वाला और रहम वाला है। ये कमीज का क्या मामला है, क्या यूसुफ की कमीज की बरकत से याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटी? नहीं, इसी कमीज की हालत देखकर तो बिनाई गई थी। बचपन में यूसुफ के कुर्ते को खून लगा देखकर तो रो रो के याकूब की आंखें चली गईं। अब वही कमीज अगर इधर आ गई तो कमीज की कोई तासीर नहीं है। याद रखिए चीजों में जो तासीर होती है ना, और बरकत है या तबरुक है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह किसी दवा में बरकत दे दे और वो दवा खाएं और ठीक हो जाए, अल्लाह का हुक्म है। खाना आप रोज खाते हैं आपको सेहत मिलती है, उसी एक खाने से एक दिन आप उठते हैं आपको डायरिया हुआ होता है, ये सब अल्लाह के हाथ में है। और यूसुफ कब से कहाँ थे, इतने दिन तो यूसुफ कुएं में पड़े रहे तो याकूब को खुशबू ना आई जो कि बिल्कुल कनान के पास था। अभी मिस्र से काफिला चला तो यूसुफ की खुशबू की आने लगी, अल्लाह ने दी। इसको इल्हाम कहते हैं। देखिए फहम हिकमत फरासत। हजरत उमर के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगी, चंद जुमले सिर्फ। हजरत उमर के लिए साहिब इल्हाम का लफ्ज आया हदीस में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत में एक शख्स ऐसा होता है जिसको इल्हाम होता है। इल्हाम के सूझ जाना, आपको पहले से लगता है कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा। हजरत उमर थे, जब एक वक्त में अपने मुल्क में अपने शहर मदीना में बैठे थे और सारिया नाम के एक कमांडर को किसी जगह काफले के लिए भेजा, अल्लाह ताला ने वहां की कैफियत हजरत उमर के दिल में डाल दी कि फतह नहीं हो रही। वहां खड़े खड़े हजरत उमर ने कहा, सारिया इला जबल, सारिया सारिया इला जबल। सारिया जो इतने 100 मील दूर बैठे हुए थे, उनको उमर की वो आवाज वहां पहुंचा दी गई और उन्होंने फौरन अपनी जगह बदली और पहाड़ की तरफ चले गए, फतह हो गई। बाद में मामला खुला, कहा मुझे उमर आपकी आवाज आई थी, कहा मुझे अल्लाह ने दिखाया था। अब ये सब क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम होते हैं। जितना आप सच्चे होते जाएंगे उतने आपको इल्हाम होंगे। बाकी ये छठी हिस, आंख फड़कना, वक्त से पहले कुछ होना, पलक गिर जाना, ये सिर्फ तोहम परस्ती है। जितने आप अल्लाह के साथ सच्चे होते जाएंगे अल्लाह आपको भी सुझाने लगेगा। हमें जिस वक्त सूझना होता है ना, हमें उस वक्त गुस्सा आया होता है और हम गुस्से से लाल पीले नीले काले खट्टे हो रहे होते हैं। वो वक्त गुजर जाता है जब एक स्पार्क होता है कि अभी कुछ होगा, कुछ अच्छी बात होने लगी। और याद रखिए कोई अच्छी होनी हो या बुरी हो, अल्लाह आपके दिल में डाल दे, ये अल्लाह की तरफ से होता है और इसके अंदर आपका किरदार भी होता है ना। ये गैब होता है ना, आप इसको इक्वायर कर सकते हैं, कोई चिल्ले कर लें और आपको पता लग जाए और आपको अल्लाह के नबी आ जाए और कोई ख्वाब दिखा दें। सच्चे ख्वाब आना भी नबूवत की 46वीं अलामत है, 46 पार्ट ऑफ दी नबूवत। फरमाए नबूवत में से कुछ बाकी नहीं रहा सिवाय बुशरा ख्वाबों के, आगे एक आयत आएगी। तो क्या पता चला कि बस अपने अंदर को पाक कर लें, जितने प्योर होते जाएंगे हिकमतें आएंगी और चीजों को कब किस वक्त कितना रखना, यही हिकमत होती है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अब क्या हुआ, सब मामले खत्म हो गए और ये जो भाई बच्चों ने दुआ करवाई ना, तो अल्लाह ने इन सब बच्चों को माफ कर दिया। यहां से आपको तौबा की तासीर भी दिखेगी। भाई का कत्ल का इरादा तो कर ही लिया था, ये तो अलग बात है कि अल्लाह ने बचा लिया, इतना बड़ा जुर्म, बाप को रुलाया। हुकूकुल वालिदैन कहते हैं माँ बाप की नाफरमानी को, जो बड़ा काबिले गिरफ्त अमल है, लेकिन अल्लाह ने इनके ये दोनों बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए क्योंकि दिल की गहराइयों से तौबा कर ली थी। तो आज भी जो लोग अपने माँ बाप को सता चुके हैं, जो अपने भाई बहनों के खिलाफ हैं, हसद है, बुग़्ज़ है, लड़ाई है, माली मामलात में, यहां बैठे बैठे कहें कि अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, और उनसे भी माफी मांग लें इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, उनमें से आप में से किसी की मौत आ जाए, आप फौरन अपने रिश्तेदार और खास तौर पर करीबियों से माफियां मांग लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे के लिए आसानियां कर देगा। अब सारा मामला खत्म, ड्रॉप सीन ऑफ द स्टोरी। चौथी दफा आप ये यूसुफ के पास जा रहे हैं, लेकिन अब उसाद कौन है? बाप। जब ये लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने वालदैन को अपने पास बिठा लिया और अपने सब कुंबे वालों से कहा, चलो अब शहर में चलो, अल्लाह ने चाहा तो अमन चैन से रहोगे। है कोई इतना खूबसूरत दिल रखने वाला यूसुफ जितना? 60-70 खानदान बनी इसराइल के इस मौके पे मिस्र में आए थे। ये है वो कहानी जो मैंने सूरत के शुरू में आपसे शेयर की थी। ये है वो मुकाम के मिस्र में दाखला शुरू हो गया बनी इसराइल का, और एक जिंदगी का नया दौर शुरू हो गया। शुरू में बहुत इज्जत मिली, आमीन थे, लेकिन जब बस्तियां आई और खराबियां हुई और किताबें छोड़ी, तो अल्लाह ने फिरौनी नाम के खानदान को इन पे मुसल्लत कर दिया, और हर दौर के फिरौन ने फिर इन पे जो जुल्म सितम तोड़े वो हम पीछे पड़ चुके हैं। तो याद रखिए, कौमों की जिंदगी में ये अरूज और सवाल आते हैं। अगली सूरत में तो इसकी लंबी ही कहानी है, लेकिन यहां से आज फिर मैं और अपने लिए कहते हैं, कई जगह अपॉर्चुनिटीज नॉक कर रही हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए। ये अलग बात है कि वो उस पर अपने आप को तैयार करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस तरह का किरदार दे के बजाय इसके कि हम झूठ सच बोल के उन जगहों पे जाएं और वहां जाकर उनकी मर्जी से रहें, लोग हमें इसी ऑनर के साथ बुलाएं जिस ऑनर के साथ हजरत यूसुफ को बादशाह ने बुलाया, और उतना ही यूसुफ कितने ब्लेस्ड साबित हुए। आप कह लीजिए अपनी जुबान में कि यूसुफ की वजह से उनके खानदान के इतने लोगों का वीजा लग गया मिस्र का। आज एक नेशनल होता है कईयों को बुला लेता है, फिर आके वो करते क्या है? असल तो ये क्वेश्चन है ना। तो अल्लाह ताला हमें इससे इबरत लेने वाला बना दे। शहर में दाखिल होने के बाद उन्होंने अपने वालदैन को उठाकर अपने तख्त पर बिठाया। कौन है अब यूसुफ? वजीर, मुल्क के एक किस्म के बेताज बादशाह। लेकिन माँ बाप के सामने आजजी, झुकाओ के माँ बाप को कहा कि आप बैठे इस तख्त पे, खुद नीचे। ये है जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि मन तवादा लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा। और सब उसके आगे बे इख्तियार सजदे में झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे इस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने इसे हकीकत बनाया। क्या पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब कब सच हुआ? 40 साल के बाद। हम कहते रात को ख्वाब देख के बस अब सुबह उठ के कुछ मिलेगा, पता चला ख्वाब में डायमंड का सेट मिला था, उठे तो वो कांच की अंगूठी भी गुम गई। हम भी सब्र हैं, सब्र कीजिए। हमें अगर अपने ख्वाब सच करने हैं ना, तो फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एडमिन्स में से किसी के एक ईमेल आया सुबह, मैंने आगे भी शेयर की, तो उन्होंने लिखा होता कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। जब आप टीम बनते हैं ना, तो अपने ड्रीम्स को ट्रू करते हैं। ड्रीम कम्स ट्रू, उसके लिए टीम कम्स ट्रू होनी जरूरी है। जब मुसलमान मुत्तहिद होंगे, ये सब ख्वाब मुसलमानों के भी पूरे होंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी बातें अल्लाह की तरफ कर दी, قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ। यहां नोट कीजिएगा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का ऑप्टिमिज्म, जिसको हिकमत और फरासत कहेंगे, कैद में जाने का जिक्र नहीं कर रहे, औरतों के टेम्प्ट करने का जिक्र नहीं कर रहे, उनके उंगलियां काटने का जिक्र नहीं कर रहे, भाइयों के कुएं में डालने का जिक्र नहीं कर रहे, कोई नेगेटिव चीज नहीं, बल्कि जो ब्लेसिंग्स थी उनको याद करते गए। ये मजमून हम सूरत इब्राहिम में समझेंगे, जिसका शुक्र और सबर ही थीम है। तो क्या सुनिए अब इस यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये ताबीर है मेरे इस ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था, मेरे रब ने इसे हकीकत बना दिया। ये इसका एहसान है कि इसने मुझे कैद खाने से निकाला और आप लोगों को सहरा से लाकर मुझसे मिलाया, हालांकि शैतान मेरे और भाइयों के दरमियान फसाद डाल चुका था। वाक्या ये है, इसको हाईलाइट कीजिए, ये है मामला फहमी। वाक्या ये है कि मेरा रब गैर मखसूस तदबीरों से अपनी मशीयत पूरी करता है। ये गैर महसूस तदबीरें क्या होती हैं? जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स, कभी दुख कभी सुख, कभी अल्लाह ने आपको किसी से बेकदर करवा दिया, उसने आपकी कदर ही ना की, कभी किसी ने आपको कुएं में डाल दिया, किसी ने आपसे नेमत छीन ली, ये अल्लाह के गैर मखसूस तरीके होते हैं इज्जत देने के। अगर यूसुफ के भाई उनको कुएं में ना डालते तो क्या यूसुफ कभी तख्त पे बैठते? ये है अल्लाह के गैर मखसूस तरीके। तो जिंदगी में कभी कोई दुख आए, कोई आपको रिजेक्ट कर दे, आप किसी को पसंद करते थे वो आपको पसंद ना करे, आपने किसी की तरह हाथ बढ़ाया और उसने हाथ झटक दिया, इस आयत को याद कर ले कि अल्लाह भी कुछ देना चाहता है। और दीन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बाज दफा कुछ लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं, बाज नेगेटिव। एक बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए शेयर करूंगी कि कई ऐसी जगह होती हैं लोग इनवाइट करते हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं सबको ही अकोमोडेट करें, लेकिन टाइम लगता है, वक्त लगता है। तो इस हमारे यूएसए ट्रिप में भी काफी ऐसे लोग थे, उनमें एक हमारी स्टूडेंट है, तो वो बहुत ही ईगर है इस चीज पे कि हम आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान भी है, इरादा भी है, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। तो उनकी कल बड़ी खूबसूरत शेयरिंग थी, अगर आप आवाज ना पहचान लें तो मैं जरूर सुनाऊं उनकी शेयरिंग ऑनलाइन पे। उनकी जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने यही कहा हुआ था उसमें कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप नहीं आ रही, नहीं आएंगी, लेकिन ये जो भी उनका इमोशनल टच था, लेकिन उन्होंने मैं कहा कि मैंने इससे ये सीखा है कि अभी हम इतना अच्छा काम नहीं कर रहे कि आप इधर आए, हमने अभी और अच्छा काम करना है, और क्लासेस शुरू करनी है, ताकि आप जब आए तो आप लोग ज्यादा फायदा उठाएं। अब वो बातें जो भी थी, लेकिन उसमें उनका ऑप्टिमिज्म मुझे बहुत अच्छा लगा कि शाबाश, अब तो वाकई मैं ना थोड़ी देर आऊं कि आप इस पे काम कर लें। तो वो कहते हैं ना कि ना घबराओ बादे मुखालिफ से औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जिन्होंने तकलीफों और दुखों और बीमारियों और आजमाइशों को अल्लाह की नेमत समझ लिया, अल्लाह उनको हिकमत फहम फरासत सब दे देगा। फिर आप देखिए, इन सारी बातों को सुन के आपके दिल में ख्याल नहीं आ रहा कि अच्छा आए मुश्किलें और फिर अल्लाह हमें हिकमत दे, आए तकलीफें, करें हम पे जुल्म लोग, हमारे रिश्तेदार हमें सताएं, बस हम रोना ही रोते रहते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बड़ा सताते हैं। थैंक यू लेटर भेजिए अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों, साथियों को जो आपको सताते हैं, क्योंकि आपको दुख देकर वो आपको एक तो सब्र का मौका देते हैं और दूसरा वो आपको उनके ऊपर एहसान का मौका देते हैं। तो जो बंदा पॉजिटिव अप्रोच रखेगा उसको कोई दुख नहीं देता कभी जिंदगी, वो पूरे यकीन से कहेगा कि अल्लाह की कसम आज तक मुझे ना किसी ने दुख दिया ना मिला, मुझे तो कोई बुरा ही नहीं लगता, मैंने तो कभी किसी से तकलीफ नहीं पाई। और इसका ऑपोजिट हो कहेंगे क्या सुना है, कोई हाल तो पूछे आप किसी का, क्या हाल है, कहेंगे बस अब जाते किधर हो, क्या किस किस की सुनाओ, उसने ये किया उधर ये, शिकवों की पोटलियां, वो किस कह लीजिए एक शिकायत बॉक्स होते हैं चलते फिरते, सजेशन बॉक्स बनाए शिकायत बॉक्स को। आप देखिए कि लोगों की बातों पे क्या रोना, लोग तारीफ भी करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तनकीद भी करते हैं तो क्या मिल जाएगा, दुख भी देते हैं तो क्या मिल जाएगा, खुशियां भी देते हैं तो क्या मिल जाएगा, असल गम आखिरत का लगा ले, असल फिक्र अल्लाह की लगा ले कि रब मेरे साथ क्या करता है, बस फिर आपको सब मामले सेटल करने आ जाएंगे, फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपका दिल आपको बताएगा। और यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी एक लिहाज से पूरी हुई। आखिरी दुआ है उनकी, इसको हाईलाइट कीजिएगा, अब सब मामले सेटल डाउन हो गए, सारी जुदाइयां खत्म, खानदान भी आ गया, बाप भी मिल गए, दुनिया की आप कह लीजिए हर नेमत मिल गई। तो कहने लगे रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क वअल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस, कहने लगे ए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझको बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। कौन सी बातें? हिकमतें और ख्वाबों की ताबीरें। जमीन और आसमान के बनाने वाले तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है, मेरा खात्मा इस्लाम पर कर और इंजामे कार मुझे सालेहीन के साथ मिला। ये हाईलाइट कर लें, सब कुछ मिल गया अब यूसुफ को, फिर भी एक चीज की दुआ कर रहे हैं और वो क्या, तवफनी मुस्लिमन, मुसलमान होने की हालत में मारना, मेरा इंजाम अच्छा करना, वल हिकनी बिस सालेहीन, और नेक लोगों से मेरा मामला करना। नेक लोगों का साथ इतनी बड़ी नेमत है, दुनिया में आपको नेक साथी मिल जाए तो नेकियों के दरवाजे खुल जाते हैं, और जन्नत में आपके लिए नेक साथी साथ हैं तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तो तो अच्छी कंपनी ढूंढे जिनके साथ बैठकर आपका दिल खुले। यहां पे बेसब्ता तौर पर यूसुफ का तस्करा पूरा हुआ। पूरी सूरत में एक बार भी यूसुफ के जाहरी हुसन का तस्करा नहीं पड़ा। बातनी हुसन, मोहसिन, साबिर और सब्र जमील करने वाला। तो हकीकत है कि रिश्ते निभाने वाली सूरत है ये। रिश्ते निभाने का हुसन पैदा कर ले, आपकी बच्चियों की वाजबी शक्ल की भी लोग कदर करेंगे। और आपको जहानत का हुसन दिख रहा है इस सूरत में, और हिकमतों का हुसन दिख रहा है, और मामला फहमियों का हुसन दिख रहा है। अपने बच्चों की जाहरी शक्लों से ज्यादा इसकी दुआ करें। आज भी अक्सर ना समझ माएं दुआएं करती है, अल्लाह बच्चा बड़ा खूबसूरत हो, आंखें लंबी हो, पूरा मेन्यू कार्ड भेजती हैं प्रेगनेंसी में अल्लाह के आगे। पलकें ऐसी हो ना कैसा, वो अब्बा पे तो बिल्कुल भी ना जाए, और दादी जैसा तो लगे ना, मेरे जैसा हो जाए तो ठीक है। लेकिन आप देखिए साथ से दुआ करें कि अल्लाह ऐसा बच्चा दे जिसमें यूसुफ वाली खूबियां, झगड़ों पे काबू पाने वाली सूरत है। वल्लाह ही कैसे बिछड़ों को मिलाया, तब मैं और आप क्या करें। हम भी इस पे कमल करेंगे कि यूसुफ ने अपने सब भाइयों को माफ किया था ना और इज्जत दी थी, हम भी अपने सब भाई बहन दोस्त साथी उनको दिल से माफ कर दें। एक एक्टिविटी लिख लें अपने लिए होमवर्क के तौर पे, ईद से पहले तमाम बिछड़े हुओं को फोन करके रब्ता करके दिल की गहराई के साथ मोहब्बत से उनसे बात करनी है। मत कहें कि मुझे माफ कर दो, लेकिन उनसे प्यार से बात कर ले उनको माफ करके, फिर देखिए आपका दिल कितना खिलता है, फिर असल ईद आपके लिए होगी।